हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गजाला जी अबीर के घर गईं और वहाँ अकरम और रिया को देखकर चौंक गईं। अबीर को वहाँ ना पाकर वे परेशान हो गईं। इधर अरमान अरहम को साथ लेकर जोया से मिलने निकल पड़ा। अरमान को अबीर की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि एक बड़ा बिजनेसमैन जोया के पीछे पड़ा हुआ है। बस अब अरमान का एक ही इरादा था कि वो जल्दी से अबीर के घर जाए और जोया को अपने साथ छीन ले आए। अरमान जोया पर अपना पूरा हक समझता था। उसे लगता था कि जोया का इस दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरमान है और कोई नहीं। उसके हिसाब से जोया सिर्फ उसके पास ही रहनी चाहिए। इधर गजाला जी ने अकरम से कहा कि अबीर के आते ही उसे खबर करे। ऐसा कहकर वे जाने लगीं, लेकिन मेन गेट पर अरहम को खड़ा देखकर वे चौंक गईं। अकरम और रिया भी अरहम को वहां देखकर हैरान हो गए। अबीर राठौड़ के घर कोई ऐसे नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बेहद टाइट थी। लेकिन अरमान ठाकुर के साथ आए गार्ड ने अबीर के सभी सिक्योरिटी गार्ड को अपने कब्जे में ले लिया था और उन्होंने अरमान के लिए अबीर के घर जाने का पूरा रास्ता साफ कर दिया था। जब अबीर के घर की सिक्योरिटी क्रैक होने का अलर्ट अबीर को मिला तो वो कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकालकर किसी से बात करने लगा। उसने एक नज़र बेहोश पड़ी हुई जोया को देखा, प्यार से उसका गाल सहलाया और जोया के माथे पर एक प्यारी सी किस करके वहां से चला गया। न जाने अबीर के दिमाग में क्या चल रहा था। वेल, गजाला जी अरहम को देखकर जल्दी से उसके पास गईं और बोलीं, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था ना, मैं आ रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ। इस हालत में तुम्हें ज्यादा देर खड़े रहना सही नहीं है। बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे आराम करना चाहिए। गजाला जी ने अपनी फ़िक्रमंदी की सारी बातें एक साथ अरहम को बोल दी थीं। तभी अरहम उन्हें हाथ दिखाकर चुप कराता हुआ अकरम और रिया की ओर देखने लगा और बोला, वो कहाँ है? तब अकरम और रिया हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तब अकरम थोड़ा संभलते हुए बोला, कौन कहाँ है? अकरम का जवाब सुनकर अरहम का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया और उसने अकरम का कॉलर पकड़ लिया। गजाला जी ये देखकर काफ़ी हैरान हुईं और वे अरहम के पास गईं और बोलीं, अरे बेटा, इसको नहीं पता है अबीर कहाँ है, तो तू अपने दोस्त से झगड़ा क्यों कर रहा है? छोड़ दे उसे। अरहम के हाथ में कैंची लगने की वजह से काफ़ी दर्द था, सो वो ज़्यादा देर अकरम के गिरेबान को नहीं पकड़ पाया और उसने अपने हाथ हटा लिए। और तभी अचानक अरहम ने एक ज़ोरदार तमाचा अकरम के मुँह पर मार दिया। अकरम उसके इस रिएक्शन के लिए रेडी नहीं था और वो दूर जा गिरा। तब अरहम चिल्लाया, बताओ कहाँ है वो? तब गजाला जी एक बार फिर बोली, अरे बेटा, उसे नहीं पता है तो फिर तू क्यों उससे झगड़ रहा है? तभी अरहम एकदम अपनी आंखें सुर्ख करता हुआ गजाला जी की ओर देखने लगा और बोला, चुप कर घटिया औरत, एक और लफ्ज मत कहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरहम ने अपनी एक उंगली दिखाकर गजाला जी को धमकी दी। अरहम का इतना भयावह रूप देखकर वे डरकर चुप हो गईं। तभी अरहम अकरम को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी रिया हाथ में गन लिए उसके सामने जा खड़ी हुई। रिया ने अरहम के माथे के बीचों बीच गन तान रखी थी। अरहम को वहां देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये ज़रूर कुछ न कुछ करेगा, इसलिए रिया ने हॉल के दरवाजे में जो अबीर की सिक्योरिटी की गन रखी रहती हैं उनमें से एक गन निकालकर अपने पास रख ली थी और आज मौका देखते ही उसने वो गन अरहम ठाकुर के ऊपर तान दी और बोली, अरहम ठाकुर, मैं जानती थी तुम कभी नहीं बदल सकते हो। ये जिस बदलाव का नाटक तुमने जोया के सामने किया था वो सब झूठ था, फरेब था। एक बार फिर अपनी बातों के जाल में उन्हें फंसाने का प्लान था। अरहम ठाकुर, तुम वो पुत्ते हो जिसकी दुम को कितनी सालों तक सीधा करने के बाद भी वो तिरछी ही रहती है। अरहम उसे घूर कर देखने लगा और बोला, जब तू मुझे अच्छी तरह से जानती ही है तो बता कहाँ है वो? तब रिया एक फीकी सी हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगता है हर बार सब कुछ तुम दोनों भाइयों के हिसाब से होगा? नहीं अरहम ठाकुर, गौर से देख, सब कुछ बदल गया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। केवल मुझे ट्रिगर दबाने भर की देरी है और इस बंदूक की पूरी छह की छह गोलियां सीधी तुम्हारे अंदर चली जाएंगी। तब तक अकरम भी रिया के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ रिया, तुम वाकई सच कह रही हो, आज इसका खेल हम लोग खत्म ही देते हैं। हमने तो सोचा था इसे जोया अपने हाथों से सजा देगी, लेकिन शायद इसको मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो चल अरहम ठाकुर, मैं आज तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। तभी गजाला जी चिल्लाती हुई वहां आ गईं और बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारो, तुम लोग क्या कर रहे हो, आखिर यहां क्या हो रहा है। तब अरहम अकरम से बोला, तुझे लगता है तू दो कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझे यानी अरहम ठाकुर को जान से मार डालेगा। गजाला जी अरहम के मुंह से ये सब सुनकर बेहद शॉक्ड थीं और अपने आप ही टूटी फूटी जबान में बोलने लगीं, प पुलिस, इसका मतलब ये लड़का पुलिस वाला है। अब गजाला जी अकरम को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगी थीं। गजाला जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा है। तब अकरम के हाथ में जो गन थी उसने उस गन के ट्रिगर पर उंगली रख दी और वो रिया को और देखते हुए बोला, रिया, मैं आज तुम्हारे गुनहगार की जान लेने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी इसका हिस्सा बनो। अकरम की बात सुनकर रिया के अंदर भी जोश भर गया और वो भी अकरम के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने अपना एक हाथ अकरम के दाहिने कंधे पर रख दिया। तब अकरम ने अरहम से कहा, सो मिस्टर अरहम ठाकुर, तुमसे हमारी ये आखिरी मुलाकात थी, अब तुम जाओ और जहन्नुम की आग में जल जाओ क्योंकि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अकरम की बात सुनकर गजाला जी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और हैरत के मारे उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गईं। शॉक्ड की वजह से अब उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। और तभी जैसे ही अकरम ने ये कहा कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तभी हॉल में एक जानदार आवाज गूंजी। वो बोला, इतनी भी क्या जल्दी है एसआई अकरम खान, अभी पहले हमसे तो मुलाकात कर लो। जैसे ही ये आवाज वहां गूंजी, गजाला जी समेत अकरम और रिया एकदम से पलट कर देखने लगे और करीब 10-12 सफेद कपड़ों के बीचों बीच डार्क ब्लू रंग के कोट पैंट में ब्लू गॉगल लगाए अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले हुए अरमान ठाकुर खड़े हुए थे। अरमान के जिस्म का एक एक कट उसके कपड़ों से भली भांति दिखाई दे रहा था। अरमान बड़ा ही डैशिंग लग रहा था, उसका स्टाइल किसी का भी दिल चुरा सकता था। तभी अरमान के सभी गांठ अकरम की ओर गए और उन्होंने अकरम और रिया को चारों ओर से घेर लिया और गन पॉइंट पर ले लिया। तभी अरमान ठाकुर बड़े ही स्टाइल से चलते हुए अकरम के पास जा पहुंचा और उसके बिल्कुल ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। अरमान को देखते ही रिया कांपने लगी और तब तक अकरम के हाथ से उसकी गन नीचे गिर चुकी थी। अरमान की नज़र अभी तक गजाला जी पर नहीं पड़ी थी और वो अकरम को देखते हुए बोला, वैसे इंस्पेक्टर, तेरी हिम्मत को मैं दांत देता हूँ, अरमान ठाकुर के बारे में जानते हुए भी तो अरमान ठाकुर की सबसे प्यारी चीज़ को चुरा ले गया। जैसे ही अरमान ने अपना नाम लिया, गजाला जी हैरान रह गईं और उसके मुंह से अनालास ही निकल पड़ा, अरमान। अपना नाम किसी औरत के मुंह से सुनकर अरमान पलटा और अपने सामने गजाला जी को देखकर वो हैरान रह गया। उसने अपना पहना हुआ गॉगल एक झटके से उतार दिया और वो गजाला जी को कड़ी कड़ी नज़रों से देखने लगा। गजाला जी को अपने सामने देखकर उनकी आंखें भर आईं और जैसे ही वे अपने कांपते हाथों से अरमान की ओर उसे छूने के लिए बढ़ीं, अरमान तभी दो कदम पीछे हो गया
और फिर अरमान अपने अतीत के साये में खो गया। गजाला जी के अपने प्रेमी के साथ भागने के बाद अरमान, अरहम और मेहर की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वो अरमान ही था जिसने अपनी माँ को एक लंबे चौड़े आदमी के साथ बिस्तर में रंगरलियां मनाते हुए देखा था। उसी पल उसके दिल में अपनी माँ के खिलाफ जहर भर चुका था। और इतना ही नहीं, अरमान के दिल में औरतों के खिलाफ राय उसी वक्त कायम हो चुकी थी। गजाला जी के जाने के बाद मेहर में एक माँ बनकर अरमान और अरहम को संभाला था, जबकि मेहर की उम्र भी उस वक्त कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने अपने बड़ी बहन होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया था। अरमान को आज भी वो दिन अच्छे से याद था जब उसके स्कूल के कुछ बच्चों ने ब्लैकबोर्ड पर एक आदमी औरत का कार्टून बनाकर उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लिपटा चिपटा दिया था और नीचे लिखा था, अरमान की माँ और उसका दूसरा बाप। उस दिन अरमान की जिंदगी का सबसे ज्यादा शर्मनाक पल था। जिस स्कूल में वो हमेशा से ही एक होनहार विद्यार्थी था जो हमेशा क्लास में टॉप आता था, उसी स्कूल में उसके साथ इतना भद्दा मजाक वो सह नहीं पाया था और उसने चित्र बनाने वाले लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और उस लड़के पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में उसे पूरे 6 महीने के लिए जुवेनाइल होम भेज दिया गया था। और 6 महीने के बाद भी अरमान के लिए सारे जख्म एकदम नए और ताज़ा थे, उसका एक भी जख्म नहीं भरा था। और जेल से वो सीधा अपने घर पहुंचा था और घर पहुंचकर अरमान ने एक पत्थर पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया था और वो जब तक अपना सर पटकता रहा जब तक कि उसका सर पूरा खून से नहीं भर गया। मेहर ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला था और फिर अरमान ने ठान लिया था कि वो जिंदगी में इतना पैसा कमाएगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। और आज अरमान जो कुछ भी था वो सबके सामने था। अरमान को खोया हुआ देखकर अरहम ने उसका हाथ पकड़ा था।